الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهية مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز المسح بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. میرے بھائیو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم کیا، اس باب میں کھانا کھانے کا ایک ادب بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جاننا چاہیے، اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر بات بیان کر دی ہے. اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کھانا تین اگلیوں سے کھائیں، استحباب الاکل بثلاث اصابع، تین اگلیوں سے عام طور پر، جنرلی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. چار انگلیوں سے بھی آپ کا کھانا ثابت ہے، آپ نے ایک مرتبہ پانچ انگلیوں سے بھی کھانا کھایا، لیکن زیادہ تر آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے، اس میں انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی. یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. طبی اعتبار سے بھی، حکیمی اور ڈاکٹری اعتبار سے بھی اس کو پسند قرار دیا گیا ہے. طبیب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا ہی لقمہ آتا ہے جو منہ میں جا کر اچھی طرح انسان چبا سکتا ہے، بڑا لے گا تو برابر چبا نہیں سکے گا. تو چبانے میں آسانی کے لیے تین انگلی، اور جتنا زیادہ چبائے گا آگے طبیب کہتے ہیں کہ ہضم ہونے میں سہولت ہوگی. آدمی زیادہ رکھتا ہے اور اس کے بعد چبا نہیں، چبائے گا نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہضم نہیں ہوگا، پھر کانسٹپیشن کی بیماری، قبضیات کی بیماری ہوتی ہے. کھانا چبانے سے نارمل انسان کو ٹوائلٹ ہو جاتی ہے، اس لیے پانچ انگلیوں میں لقمہ بڑا ہوگا، چبانے میں دیر لگے گی، یا برابر چبا نہیں سکے گا، یا ہضم میں بھی پریشانی ہوگی. اسی لیے اس کے باوجود بھی اگر کسی انسان کو پانچ انگلیوں کے بغیر چلتا ہی نہیں تو جائز تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا زندگی میں، ایک مرتبہ، وہ اس کا ثبوت جواز تو نکل جاتا ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ تین انگلیوں سے لقمہ لے، منہ میں رکھے تو چبانا آسان ہے، اور جب جائے گا اندر تو ہضم ہونا بھی آسان ہے. دونوں چیزیں یہ طبیب لوگ کہہ رہے ہیں. اب آج کل ہمارے زمانے میں کھانے ایسے ہوتے ہیں، چلو اس زمانے کے کھانے اور اس زمانے کے کھانے میں، وہ پہلے زمانے کے کھانے نہیں رہے ہیں، تو ہمارے زمانے کے کھانے کو ذرا وہ عام طور پر نرم قسم کے بنتے ہیں، سافٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو لقمہ بنانے کے لیے پانچ انگلی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تین انگلیوں سے گر جائے گا، چونکہ اتنا سافٹ اور نرم ہوتا ہے. तो कभी कभी रोटी वाला अगर लुकमा है तो वो तो रोटी तो ठीक है, वो नरम नहीं, तो उसको तील उंगलियों से ले ले तो आसान हो जाएगा। तो कभी इस पर भी अमल करें, कभी उस पर भी अमल करें। खिचड़ी लेंगे, दाल चावल लेंगे तो फिर पांच उंगलियों की जरूरत पड़ेगी, अगर रोटी हो तो ठीक है, चलो तीन उंगलियों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में ज्यादा अमल तीन उंगलियों का था, आपने चार उंगलियों से भी कभी खाया, कभी पांच से भी एक मौके पर आपने खाया है, लेकिन चूंकि आजकल खाने बहुत नरम होते हैं तो तीन उंगलियों से, लेकिन तब भी एतबार से शाम के खाने में रोटी अगर हो तो रोटी तीन उंगलियों से लुकमा लेकर खाएं तो चबाना आसान है, हजम होना आसान है और पेट में हाजिमा जल्दी हो जाएगा, साथ साथ में इंसान को कब्जियात नहीं होगा। ये तीन बात तबीब लोग लिखते हैं अल्लाह के नबी की इस सुन्नत पर। एक तो सुन्नत ये, दूसरी ये है कि छोटे छोटे लुकमे अगर लेंगे तो पेट जल्दी भरेगा, यानी आपके भूख का तकाजा ये है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। पानी पीने में भी आप छोटे छोटे खाने में लुकमे ले, पानी भी थोड़ा थोड़ा पिए। आजकल के तबीब कहते हैं कि चूस चूस कर पिए, जैसे चाय गर्म होती है तो आदमी कैसे चूस कर पीता है, अगर पानी भी चूस कर पीता है तो तबीब कहते हैं कि बड़ा पेट भी छोटा हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे हजारों आदमियों के ये तजुर्बे हैं, हाजिमा जल्दी होगा। क्यों? आप चूस कर पिएंगे तो मुंह का सलाइवा जो है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से जल्द खाना हजम होगा और पेट छोटा होगा, इसी तरीके से हजम जल्दी होगा। ये बात कह रहे हैं। गोया शिकम शिकम सीरी जिसको कहते हैं, यानी कम खाने से पेट भर जाना, वो छोटे लुकमे की वजह से होता है। आदमी छोटे छोटे लुकमे छोटे ले तो उससे पेट जल्दी, यानी इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खा लिया, लेकिन अगर बड़े बड़े लुकमे खाएगा तो फिर खाता ही रहेगा, पानी की जगह भी नहीं होगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो ये है पहली कि वो तीन उंगलियों से खाना खाना। दूसरी सुन्नत मुस्ताहब चीज क्या है? लाइकल असाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटते थे। उंगलियों को क्या है? लाइक का माना है चाट लेना, टू सक द फिंगर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू सक फिंगर्स। जब आदमी खाने से फारिग होता है तो जाहिर बात है उंगलियों के ऊपर कुछ ना कुछ खाना लगा रह जाता है। अगर हाथ धोना है तो धोने से पहले, बिफोर वी वॉश अवर हैंड, और अगर आजकल न्यू फैशन में हाथ नहीं धोते, टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी और चीज से पूछ लेते हैं, रुमाल रख देते हैं, तो उस सूरत में भी पहले उंगलियों को चाट लेना मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोने से पहले या पूछने से पहले क्या है, उंगलियों को चाट लेते थे। उस सूरत में क्या होगा, जो अज्जा जो खाना उंगलियों पर रह गया है वो बरकत हो सकता है, उसमें भी कोई बरकत हो, दाना रह गया हो। और अगर आपने धो लिया तो इतना खाना तो आपने जाया कर दिया जो उंगलियों पर लगा है, ये अदब के खिलाफ। तो उंगलियों का चाटना भी एक महबूब अमल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब अमल है। आजकल लोग फैशन वाले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को फैशन ही के ताबे रखा है, फैशन। हमारे यहां मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवा के थे, उन्होंने किताब लिखी है मजहब और साइंस, मजहब इस्लाम और साइंस क्या कहती है, उसमें उन्होंने लतीफा लिखा है कि इंसान का मिजाज वो तगैयर पसंद है, बदल जाने का, आज ये कल ये परसों ये, इस तरह इसको कह रहे तगैयर पसंद। उसमें लिखा है कि एक आदमी बाजार से उसने कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा और दौड़ता हुआ घर जा रहा था, बाजार से दौड़ता हुआ घर जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई इतना दौड़ता हुआ घर क्यों जा रहा है? तो कहने लगा, इसलिए दौड़ कर जा रहा हूं कि जल्दी से उसको पहन लूं, ताकि ऐसा ना हो कि पहनने से पहले ही कोई फैशन बदल जाए। फैशन, आज तो फैशन के ताबे है ना, जल्दी जल्दी जाके पहन लो, ताकि पहन लो फिर फैशन बदले, ऐसा ना हो कि फैशन बदल गई फिर मैंने पहना तो ये तो फैशन नहीं बदल गई। इसलिए फैशन का हाल ये बदलता रहता है, ये फैशन। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया है उसी पर हमें फख्र करना चाहिए, उसी पर फख्र। मेरे नबी का तरीका है, फैशन तो ये है। इसको पुराना लोग समझते हैं, ये उंगली चाटना पुराना तरीका है। अपना लिबास में, अपने खाने में, अपने पीने में, चेहरे में, हर चीज में, ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो राजी होने वाले नहीं है मेरे फैशन करने से, क्या वो राजी होंगे? कुरान तो कह रहा है, वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। देखा कुरान क्या कह रहा है, ये सूरह बकरा की आयत है, वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता द यहूद और नसारा they will get never ever happy, they will never please with you until you follow their mazhab। देखा, जब तक तुम उनकी मजहब की बात को अपने ऊपर लाओगे ना तो राजी होंगे, वरना जुब्बा पहनकर ओए एयरपोर्ट पर लोग आपको देखेंगे, टोपी वाला है तो स्कार्फ वाला है, जुब्बा पहना है, दाढ़ी है इसकी, कभी राजी नहीं होंगे, कभी नहीं, वो कभी आपसे खुश होने वाले। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह ने इंसान को बनाया वो कह रहा है अल्लाह पाक, वलन तरदा, लफ्ज लन जो इस्तेमाल किया जाता है नेवर एवर के माने में, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा राजी हो जाए, कभी बिल्कुल नहीं। ये इन्ना अन्न कान्न लाकिन्न, ये जो अरबी ग्रामर में लफ्ज लन जो आता है वो हमेशा के लिए है, कि एक मिनट के लिए आपसे राजी नहीं होंगे। हाँ, राजी कब होंगे? जब आप उनका फॉलो करो तब राजी हो जाएंगे। अपना मजहब छोड़ो, उनके मजहब, तुम्हारे बाल की स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे कपड़े की स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, फैशन जिसको कहते हैं। इसलिए हम तो उनको कभी खुश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए फखर एंड प्राउड थिंग्स द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए तो फखर की चीज है। वो लोग फैशन पर फखर करते हैं, हमें मुसलमानों को सुन्नत पर फखर करना चाहिए, कि मेरे नबी की सुन्नत है ये, तो हम उंगली चाटेंगे खाने के बाद। और फैशन का हाल तो ये है, पहले जिस चीज को बुरा समझा जाता था उसी को आज फैशन समझते लोग। पहले जमाने में वो देखा एक आदमी को, ए फकीर के बेटे इधर आ, ए फकीर इधर आ, तो उसको बहुत बुरा लगा, मुझे फकीर कहा, वो तो मिलियनर का बेटा था। तो मैंने पूछा, मुझे फकीर क्यों कहते हैं? तो देखो ना, ये जींस पहनी है, यहां से एक फटी हुई, यहां से फटी हुई, यहां से फटी हुई, तो फकीर ही है ना, तो
सही
फकीर है। नहीं 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 नहीं, फुला एक्टर पहनता है इसलिए हम पहनते हैं। फुला एक्टर फकीर बन गया उनके मजहब, तू भी उनके मजहब पर फकीर बन गया। मेरे नबी ने ऐसा बतलाया कि तेरी ये सब सतर नजर आए, देखो कितने नौजवान को देखना, फैशन। और यहां भी क्रिकेटर के नाम होंगे, पीछे भी होंगे फुटबॉलर्स के नाम होंगे, क्या और क्या फैशन। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ऐब समझते, ऐब समझते। पहले खड़े खड़े खाने को अच्छा नहीं समझते थे सारे मजहब वाले, लेकिन वही अब फैशन बन गया, बुफे सिस्टम, लो और खड़े खड़े खाओ, लो और खड़े खड़े खाओ, पैलेट में जितना चाहे ले लो, सब जैसा ही खुलता है टूट पड़ते हैं, लाइन लग जाती है बुफे सिस्टम में भी। वो लंबी लाइन लग गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुन्नत ये नहीं थी, फरमाया जितनी जरूरत इतना लो, प्लेट में कितना लो, जस्ट गेट एज मच यू नीड इट, सारा ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया बुफे सिस्टम, ताकि दोबारा उठ के आना ना पड़े। सो लिबास के मामले में यही है, मर्द जनाना लिबास पहनता है, औरतों का लिबास, औरत मर्दाना लिबास पहनने लगी, ये फैशन हो गया। हमारी औरतें भी कितनी है जो बेल बॉटम और जींस पहनती है, मर्द का लिबास है या ऊपर तक पहनती है कि पूरा सतर नजर आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें तुम्हारे एंकल छुपना चाहिए, नमाज में भी, नमाज नहीं होगी नहीं तो एंकल भी उनके लिए छुपना चाहिए। अब देखो मर्द एंकल से नीचे पहनता है, औरतें एंकल से ऊपर पहनती है, उल्टी, यानी नबी की हर सुन्नत को बदल दिया लोगों ने। इसलिए एक मर्तबा हमारा तो अमेरिका भी जाना सफर हुआ था, देखा कि एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकले तो 4-6-7-8 है मुसलमान है सारे, दाढ़ी भी है। तो हमारे साथ दूसरे वो मुफ्ती साहब जो मुझे फेच करने आए थे, लेने के लिए आए थे, मैंने पूछा ये सब कि यहां भव है ना, भव यहां सुराख लगाकर यहां पर भी देखो ऐसे बाली लगाई है जैसे औरतें कान में लगाते ना, यहां पर लगाई, ये यहां पर सुराख करके यहां बाली लगाई, जबान में सुराख करके उसमें बाली लगाई है, कैसे होता होगा, खाना कैसे खाते हैं, आदमी को तकलीफ होती है ना। और सुभानअल्लाह रुखसार पर यहां यहां लगाई, मैंने पूछा ये, फरमाया मुसलमान है, ये सब मर्द है, ये फैशन है। मैंने उनको बुलाया, सलाम अलैकुम, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू, ओके सब ओके, व्हाट्स योर नेम, कासिम, व्हाट्स योर नेम, ऑल दिस इज फॉर लेडीज, इट्स फैशन, मुझे क्या कहता है, फैशन है, वाह वाह, यानी उसको फखर समझते हैं, औरतों की चीज मर्द इस्तेमाल करने लगे। औरतें भी यहां तो नहीं लगाती, भौ के ऊपर कोई बाली लगाती है, औरतें भी नहीं लगाती, रुखसार पर तो कोई कभी नहीं, कान में हो या बहुत कम तो नाक में हो, और कहा रुखसार पर नहीं, जबान पर नहीं, मुसलमान। इसलिए और फैशन भी ऐसी है जिसको फखर से करते हैं। एक मरतबा दिल्ली जाना हुआ तो 3 या 4 नौजवान थे, औरतों के कपड़े पहने हुए थे और वही सब बाली लगाई थी कान में यहां सब, सारे दिल्ली के बाजार में लोग उनको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन उनको कोई पड़ी हुई नहीं है, उनको कुछ फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपने फैशन के ऊपर खुश है, लोग हंसे। एक मुसलमान ऐसा है कि अगर उस पर उसकी दाढ़ी पर कोई हंसे तो फौरन दाढ़ी निकाल देगा, उसकी टोपी पर कोई हंसे तो टोपी निकाल देगा, उसके कुर्ते पर कोई हंसे तो कुर्ता निकाल देगा। मुसलमान एक ऐसा है, औरतों पर अगर हिजाब पर कोई हंसे तो हिजाब निकाल देगी, दुपट्टे पर कोई हंसे तो दुपट्टे निकाल देगी, बाल खुला कर देगी, बात मेरी समझ आ रही है। लेकिन वो आराम से जा रहे हैं, लोग हंस रहे पूरे बाजार में, ने कहा ये कहां कहां यूरोप से आए हैं, लेकिन उनकी फैशन यूरोपियन फैशन, उन पर वो खुश है, उनको कोई फिक्र नहीं, लोग हंसते रहे। एक मुसलमान है कि नबी की सुन्नत अदा करने पर अगर कोई हंसे तो क्या कहता है, फौरन नबी की सुन्नत को बदल देता है। ओ मेरे नबी के जमाने में सहाबा को देखो, हुज़ैफा बिन यमान का किस्सा तो मशहूर है, अब बार बार सुना होगा आपने, किसरा के दरबार में हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए, खाना खा रहे थे बादशाह के दरबार में, खाना बड़े बड़े लोग बैठे हैं और फैशन वाले लोग बैठे हैं, गैर मुस्लिम बड़े बड़े यहूद नसारा बैठे हुए हैं। खाने के दौरान हजरत हुज़ैफा बिन यमान का लुकमा नीचे गिर गया, सही वाक्य। तो जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर लुकमा नीचे गिरे तो शैतान के लिए न छोड़ो, उसको साफ करके खा लो, वो शैतान खाएगा। कौन खाएगा? तेरा खाना शैतान खाए। अल्लाह के नबी का फरमान है, शैतान के लिए न छोड़ो, बल्कि उसको उठाकर, उस जमाने में तो चलो उठाकर इसलिए के नीचे मिट्टी वगैरह, हमारे यहां तो दस्तरखान होता है वो साफ ही तो होता है, उसको उठाकर खा लो। जब उन्होंने उठाकर साफ करके अपने नबी की सुन्नत को अदा किया, उठाकर खाना चाहा, तो आपके पड़ोस में, चूंकि साथ में ऐसे बैठते हैं ना खाने वाले, तो एक ईरानी खादिम और गुलाम था, ईरानी है पड़ोस में, उसने कहा आका, उन्हीं का गुलाम था, हजरत हुजैफा बिन यमान का अपने गुलाम के साथ गए हुए थे, एक ईरानी गुलाम था, कहा आका यहां बादशाह के दरबार में नीचे से लुकमा उठाकर खाना अच्छी चीज नहीं है, ये फैशन नहीं है, आजकल के फैशन नहीं, ये तो लोग आप हंसेंगे, लोग आप पर क्या है, आपको देखेंगे तो सोचेंगे इन्होंने कभी खाना देखा ही नहीं, ऐसे तो कहते हैं नहीं, कभी देखा ही नहीं कैसे खा रहे हैं, जैसे हंगरी लायन की तरह। सो आपको कहेंगे नादान है, आपको भला बुरा भला। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया था वो हमें अपने दिल और दिमाग में लिख लेना चाहिए, मेरे नबी की सुन्नत को उन्होंने बादशाह के दरबार में, गैर मुस्लिम के दरबार में कैसे अदा किया। फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाए हुमका, क्या मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों की वजह से। क्या जब जुमला कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी, मेरे महबूब की सुन्नत है गिर जाए तो शैतान के लिए न छोड़ो, उठा के खा लो, क्या मैं इस सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों के लिए कि वो मुझे बुरा भला कहेंगे, नादान कहेंगे, फुला कहेंगे। सहाबा के दिमाग में, हाथ में, जबान में, आंखों में, पैरों में नबी की हर सुन्नत थी। मैं मदरसे के तालिबात और तालिब इलम को कहा करता हूं, अब सारी सुन्नतें बुखारी में आ गई, मुस्लिम में आ गई, तिर्मिजी में आ गई, अबू दाऊद शरीफ में आ गई, मिश्कान शरीफ में आ गई, सुन्नतें वहीं रह गई, हमारे बदन से निकलकर वहीं रह गई। सहाबा की जिंदगी में कोई बुखारी नहीं थी, कोई मुस्लिम शरीफ नहीं थी, तिर्मिजी शरीफ नहीं थी, अबू दाऊद शरीफ नहीं थी, कोई हदीस की किताब तो नहीं थी, लेकिन वो क्या है, सुन्नतें, आंखों की सुन्नत उनकी आंखों में थी, कान की सुन्नत उनके कान में थी, दिमाग की सुन्नत दिमाग में थी, हाथ की सुन्नत हाथ में थी, हर सुन्नत उनकी जिंदगी में थी। इसीलिए हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद गए, और देवबंद के दौरे हदीस के तलबा में आपका बयान हुआ तो पूछा, बताओ हदीस किसको कहते हैं, हदीस किसको कहते हैं, तुम लोग बुखारी पढ़ रहे हो, मुस्लिम पढ़ रहे हो, तिर्मिजी पढ़ रहे हो, हदीस की सारी सियाह सिक्ता पढ़ रहे हो, बताओ हदीस किसको कहते हैं। किसी ने क्या कहा, हदीस उसको कहते हैं अकवाले रसूलुल्लाह, अफआले रसूलुल्लाह, अकवाले सहाबा, इसको सब हदीस कहते हैं। हजरत ने फरमाया तुम सब सही कह रहे हो, हकीकत में सही है, हदीस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को, अफआल को, सहाबा के अकवाल को, अफआल को, आपकी आपकी देखी हुई चीज और आपकी खामोशी को हदीस कहते हैं। फरमाया नहीं, मेरे नजदीक ये आपकी सब बातें सही है, मेरे नजदीक हदीस उसको कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे दिल में आ जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारी पेशानी की बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक आ जाए, यह है हदीस। ये बात समझ आ रही है ना, अब दिल में अल्लाह नहीं, वो तो किताबों में है, बदन में सुन्नत नहीं, किताबों में है। इसलिए ये बात जो अल्लाह ने बयान फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउन, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो मेरे नबी की इत्तबा करो, मेरे नबी के तरीके पर चलो। यही तस्वुर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम तो हम अल्लाह के महबूब उस वक्त बन सकते हैं जब नबी के एक एक तरीके पर अमल करेंगे। कैसा जवाब दिया, तो उंगलियों के चाटने से पहले पहले चाट ले और उसके बाद हाथ को धोए, चाट ले उसके बाद टिश्यू पेपर, चलो फैशन है तो टिश्यू पेपर से साफ कर ले, लेकिन ये खाना जो लगा है उंगलियों पर उसको जाये न करे, चाहे दो दाने हो। हमारे यहां पाकिस्तान के कारी फतेह मोहम्मद साहब बहुत बड़े कारी थे, ये पानीपत के रहने वाले, पानीपत ही थे कारी फतेह मोहम्मद साहब, उनके मुताबिक लिखा है, खाने के बाद कुल्ली के लिए गागल द माउथ, पानी मुंह में लेकर उसको निगल जाते थे। खाने के बाद पहले क्या करते थे, उंगलियां चाट लेते थे, फिर पानी लेते थे मुंह में और क्या करते थे, कुल्ली करते थे ऐसा, फिर क्या करते थे, पी जाते थे। तो क्यों ऐसा किया, उनसे पूछा गया, फरमाया मुंह में अगर कोई लुकमा हो हम कुल्ली करके नीचे डालेंगे तो ये जाया हो जाएगा, कम से कम मेरे पेट में तो चला जाए, एक लुकमा जाए, एक दाना जाया नहीं करते थे। ऐसे भी तो लोग थे भाई, तो अब आज के जमाने के थे, इतना दूर भी नहीं जाना कारी फतेह मोहम्मद के लिए, 40-50 साल। ये दूसरी सुन्नत होगी। पहले सुन्नत हमने बतलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लाइक असाब है, नहीं क्या है, पहली सुन्नत है तीन उंगलियों से खाना, दूसरी सुन्नत क्या है, उंगलियों को चाटना, और तीसरी सुन्नत जो है बर्तन को खाने के बाद साफ कर लेना, चाट लेना, अपनी शहादत की उंगलियों से चाट लेना। लेकिन ये उस वक्त है जब आपने खाना पूरा खा लिया हो, प्लेट में कुछ बचा नहीं, खा लिया हो। अब यह है कि आदमी शुरू ही से अपनी प्लेट के अंदर में अंदाजा लगाकर खाना ले, लेकिन कभी कभी आंखें बड़ी होती है, आंखें क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा ले लेता है, पूरा नहीं कर पाता, वो तो खत्म होने वाला नहीं है, पहले जितना इतना लो, जरूरत पड़े तो फिर लो, लेकिन पहले से इतना ले लेते हैं सब खा जाएंगे, तो आंख कभी भरती नहीं है, इस आंख को कब्र की मिट्टी भरेगी, उससे पहले कोई नहीं भर सकता है। हाँ, जिसको इतना ख्याल हो कि मैं इसको आसानी से इतना पूरा कर लूंगा, इतना ही खाना लो, फिर जब खाना पूरा हो जाए ना, अब तो खाना नहीं बचा, अब प्लेट को चाट लो, सक इट द प्लेट, प्लेट द फूड के बाद, और जो अज्जा लगे हैं उसको खा लो। हदीस में उसकी वजह आ रही है, क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लेट को चाटने का जिक्र क्यों फरमाया। लेकिन अगर प्लेट में पहले से खाना ज्यादा है, पूरा ही नहीं कर सका, और यूं कहा पे चलो प्लेट में है उसी में से खा लो, प्लेट में है उसी में से खा लो, अब इतनी प्लेट है उसमें, उसी में प्लेट नहीं है इसी में खा लो, तो फिर अपनी तरफ से खाओ, ये सुन्नत है, किधर से खाओ, अपनी तरफ से, और जो जगह आपने खा ली उसको साफ कर लो, बकिया खाने में हाथ ना डालो ताकि दूसरा आदमी वो खाना खा सके। समझ में आई बात। बाज लोग ये समझते हैं कि जितना खाना प्लेट में हो पूरा करना लाजमी है, मैं सब खाना पूरा नहीं किया आपने, प्लेट में रह गया आपने, पूरा ही नहीं किया, ये जरूरी नहीं है। असल सुन्नत ये है कि आप प्लेट का खाना पूरा कर चुके हैं तो खाने के अज्जा प्लेट को साफ करके चाट लो, ये। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 1 किलो अंदर में डाल दिया पर इसको पूरा ही कर लो, आप में चाहे ताकत हो या ना हो दबाते रहो, चाहे उल्टियां हो जाए, ये नहीं है। ये सुनो अल्लाह के नबी का फरमान। एक मरतबा गंगो जाना हुआ था, तो देर से पहुंचे तो कोई होटल थी, पुरानी होटल में भूख लगी थी, खाना खा लिया, वहां तो बफलो काटते हैं ना, भैंस का गोश्त खिलाते हैं। एक मरतबा हमारे सफर हुआ शेख साहब के साथ, भूख बहुत लगी थी, मैंने कहा शेख साहब कहीं खाना पड़ेगा, तो थाना भवन ले गए वहां मौलाना थाना, और खाने के बाद बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह, खाया हमने, खाने के बाद कहा पता है कौन सा गोश्त था ये, मैंने कहा नहीं होगा, मैं बकरे का नहीं, कहे तो भैंस का गोश्त, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कह रहे तू खाएगा नहीं इसलिए मैंने पहले से नहीं बताया। खैर भैंस भी हलाल है, समझ में ये बात, हाँ तो भैंस ही खाते हैं, गाय नहीं खाते, बकरे वगैरह नहीं खाते। सो एक देहाती लोग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तो जब प्लेट में खाना रह गया इसलिए प्लेट साफ करने का मतलब तो था नहीं, इसलिए प्लेट में खाना बचा हुआ था चंदा, हाँ अगर चंदा ने हो तो साफ कर लो, लेकिन प्लेट का जो हिस्सा आप खा चुके हैं तो उसको क्या करो, मौलवी साहब पूरा करो ना। अरे भाई कैसे पूरा करें इसको, मैं इसको जब ज्यादा खाना हो तो पूरा नहीं हो सकता, समझ में आई बात। अगर खत्म हो गया तो मैं इसको चाट सकते हैं, मौलवी बहाने बनावा हो गया, कहते मौलवी बहाने बनावा उनकी जबान में कहते हैं, बहाने बनाते हैं, समझ में आई बात। तो वह अखद लुकमी तस्कुतमिन अकला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लुकमा जो खाने के दरमियान से गिर जाए उसको उठाकर साफ करके खाना ये भी मुस्ताब है। वह जवाज कदम, आदमी खाने से फारिग होकर अपनी उंगलियों को चाट चुका हो, धोने के लिए पानी मौजूद नहीं, या हाथ बहुत ज्यादा थोड़े खाने में मिले हुए हो यानी मुलवस हो। तो क्या होता है कभी किसी होटल में नाश्ता करते हैं, चाय बिस्किट वगैरह खा लेते हैं तो हाथ धोने की जरूरत नहीं होती है, तो एक हाथ को दूसरे में मिलकर साफ कर लेते हैं इस तरीके से, भाई चलो बिस्किट खाई है चाय के साथ तो नहीं धोते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो उंगलियों के चाटने का जिक्र मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़ा अकल अहदुकुम तआमा, जब तुम में से कोई खाना खाए, फला यमसहु असाबे, हाथ को न धोएं या हाथ को टिश्यू से साफ न करें, हत्ता यलअका औ युलअका, या तो खुद चाट ले या किसी को कहे अपने बच्चे को चाट ले मेरी उंगली को, ये सुन्नत है। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खाना खाया उसके बाद भाई को कहा मेरी उंगली चाट ले, इस सुन्नत पर भी अमल था उनका जिंदगी में, एक सुन्नत चटा दिया। कोई नेक आदमी आए और वो कहे आपको मेरी उंगली चाट ले, सुभान अल्लाह, सुन्नत है ये भी, खुद चाट ले या किसी को चटवा ले, ये भी सुन्नत है। हम उसको सुन्नत नहीं समझते, हम उसको फैशन समझते हैं, ये अच्छी चीज नहीं यार, तो ठीक नहीं, मैं उंगली को चाटे मेरी। सो दूसरे हदीस में राय तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू क्या कह रहे हैं, ईट विद द थ्री फिंगर्स फैदा फरगा Like when he was finishing his food, like he was sucking his fingers. Finger को चाट लेते थे। अब चाटेंगे कैसे, कोई सुन्नत याद है चाटने का क्या तरीका है उंगली चाटने का, ये भी तो सुन समझना चाहिए। अल्लाह के नबी पहले कौन सी, तो पहले दरमियान की उंगली, फिर शहादत की, फिर अंगूठा, ये फिर अंगूठा। दरमियान अगर तीन उंगली से खाना खाया हो तो, और अगर पांच से खाया चार से खाया तो, ये बेबी फिंगर बोलते हैं इसको, छोटी उंगली उसके बाद वाली उंगली है, इसको चाटो, इसको इसको इसको, और अगर पांचों से खाया तो छोटी उंगली से शुरू करो चाटना, ये तरीका है, इधर से शुरू करो, इधर 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 इधर, इस तरह ये अंगूठा आखिर में आएगा। इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उंगली को चाट लो, तुम्हें पता नहीं है कौन से खाने में बरकत रखी हुई है, कभी प्लेट में बरकत नहीं थी, उस खाने में जो उंगलियों पर लगा उसमें रह गई हो तो बरकत तो अंदर गई नहीं, बरकत सारी नहीं होती, बरकत का तो एक ही दाना होता है, समझ नहीं बात। पूछ सकते हैं आपने धो लिया हो, इसलिए बरकत क्या चीज है, बरकत का क्या मतलब है, आदमी जिस मकसद के लिए खाना खाना है खा रहा है वो मकसद उसको हासिल हो जाए। भाई मैं खा रहा हूं, जैसे एक आदमी कमाता है, कमाने का मकसद क्या है, मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, मजदूरी करता है, पैसे लेकर आता है, वेजेस लेकर घर पर बीवी को कहता है तुम पैसे मिल गए। सो अगर उसकी जरूरतें क्या कह रहे हैं, मेहनत मजदूरी से हासिल की हुई कमाई से उसकी जरूरतें क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, कपड़े खरीदना, खाना लाना, फीस भरना, फुलाफा, ये सब उसकी, इसीलिए तो कमाना, ये कमाने में बरकत है, इसकी जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई, ये बरकत है। इसी तरह लेकिन अगर उसको 1,000 pounds मिले फिर भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो क्या कहते हैं, यार पैसे में बरकत ही नहीं है, इधर से आते इधर चले जाते हैं, और मेरे पास पैसे नहीं, अभी सब खत्म हो गया, अभी और भी काम बाकी है। बरकत कैसे मालूम हो कि बरकत नहीं? तो कहता है मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई। जरूरतें पूरी हो जाए तो जिस जो काम भी जिस मकसद के लिए किया जाता है अगर उसका काम पूरा हो जाए तो समझो उस काम में क्या हो गई, बरकत हो गई। और जो काम करें और उसका मकसद ही पूरा न हो तो समझो उसमें खैर बरकत नहीं है। ये मतलब है बरकत का। आप नौकरी करते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं और 5,000 में भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, समझ में आई बात, तो समझो इसमें बरकत नहीं है। और अगर आपको 500 मिल रहे हैं और उसमें आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तो समझ लो उसमें क्या हो गई भाई, बरकत हो गई। खाने के अंदर क्या बरकत है? जिन मकसद के लिए खाया जाता है, कौन कौन खाने का क्या मकसद होता है? नंबर एक, आदमी अपनी भूख को मिटाए। भूख लगी है ना तो खाना खाते हैं, मकसद है खाना खाने का। खाना खाने का और कोई मकसद थोड़ा होता है, भूख लगी है तो पेट भरना, ये खाने का मकसद है। नंबर दो पर, खाकर लज्जत हासिल करे, बहुत टेस्टी था, राहत मिले उसको, मुंह में हवा रह गया, स्वाद रह गया, टेस्ट रह गया, समझ नहीं बात। फिर ये खाना पेट में जाए और उससे क्या बने, खून बनता है और उसको ताकत हासिल हो, पेट में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। ये सारी चीजें खाने के मकासिद में से है। मुंह में लुकमा डाला, इधर गया, फिर तो उल्टी हो गई, तो मकसद हासिल नहीं हुआ, समझ में आई बात। तो अगर ये सारी चीजें हासिल हो तो कहा जाता है बल अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया, पेट में आराम से डाइजेशन भी हो गया, नॉर्मल टॉयलेट भी हो गई और ताकत भी मिल रही है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, ये बरकत है। ये क्या है? बरकत है। लेकिन अगर कोई आदमी खा रहा है लेकिन पेट ही नहीं भर रहा, अभी 4 बजे खाया, 5 बजे कहता भूख लगी है, तो यूं कहेंगे उसके खाने में बरकत नहीं हुई, या पेट तो भर गया लेकिन फौरन टॉयलेट में दौड़ गया, बदहजमी जिसको कहते हैं, डायरिया हो गया इसको, तो उस खाने से भी खून बनने के बजाय डायरिया बन गया, तो बरकत नहीं हुई। तो जो राहत पहुंचनी चाहिए खाने के बाद पेट में, वो राहत नहीं पहुंची। बहुत से लोग खाना खाते फौरन टॉयलेट भागते। उसके लिए सबसे आसान शक्ल यही है कि जिसको खाने के बाद फौरन पेट में दर्द होकर टॉयलेट लगती हो तो उसके लिए क्या है, हाथ धोए और बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्ला पढ़े और छोटे छोटे लुक में खाएं और चबाएं, ज्यादा चबाएं, इंशाल्लाह फिर ये बीमारी पेट की खत्म हो जाएगी। चूंकि ये भी कब्जियात है, एक तो 2-3 दिन तक टॉयलेट न होना ये भी कब्जियात है, और एक है बार बार टॉयलेट जाना नंबर 2 के लिए, ये भी कब्जियात है। ये खाना ही हजम नहीं होता इसका, फौरन निकल जाता है, ये सारी चीजें। सो डॉक्टर कहता है तेरे पेट में खाना जाता है फौरन निकल जाता है, तो ये बेबरकती है। याद रखो ये बरकत की मैंने तारीफ बयान की आपके सामने ताकि आपको पता चले बरकत क्या चीज है। इसलिए अगर बरकत हासिल करना चाहते हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हें मालूम नहीं खाने को कौन से हिस्से में बरकत है, उंगली चाट लो, चाटने से भी खाना हजम हो जाता है। हाँ ये नबी शासन का तरीका है, इसको फैशन ना समझो, इसको मायूब ना समझो, उसको ऐब ना समझो, उससे भी इंसान को नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से कितने ही फवाइद हासिल होते हैं। आदमी उंगलियां चाट ले अल्लाह के नबी की सुन्नत समझकर, यहां तक के हाथ धोए, मेरे नबी की सुन्नत है हाथ धोना। 10 बजे वुजू किया, जोर के बाद बगैर हाथ धोए खाना खाता है, नहीं चलता। उसके बाद कितने काम किए तूने हाथ से, उससे पहले हाथ धो। उस वक्त भी अगर नियत कर ले खाने से पहले हाथ धोए और खाने के बाद हाथ धोए, सुन्नत के मुताबिक खाकर नियत करे, अल्लाह मुझ पर इतना कर्जा है तो अदा फरमा दे, आसानी पैदा फरमा दे, कहीं अकाबिरी फरमा तो उसका कर्जा भी अदा हो गया है। ये बात मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने लिखी, कई ऐसे लुकमा गिर जाए उसको उठा लो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, देखिए, इज़ा वक़अत लुकमतु अहदिकुम
فليأخذها فليمت ما كان بها من أذن وليأكلها. فرمایا لقمہ اگر گر جائے اس کو اٹھا لو, جو کچھ اس پر لگ گیا غبار اس کو صاف کر لو اور کھا لو. اور کیا فرمایا ولا يدع يدعها للشيطان. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, جو لقمہ گر جائے آپ نہیں کھائیں گے تو شیطان کھائے گا, شیطان کھا جاتا ہے, میرا کھانا شیطان کھائے اور وہ موٹا ہو جائے میرے خلاف. ولا يمسح يده بالمنديل, اور ہاتھ صاف نہ کرو ٹیشو سے یا دھو نہ لو, یہاں تک کہ یلعق اصاب ہے اپنی انگلیوں کو چاٹ لو. یہ صحیح حدیث ہے. فانه لا يدري في اي طعام بركه, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے کھانے میں برکت ہو. ہم نے دھو لیا تو برکت تو چلی گئی, ہاں, لیکن اگر ایسا لقمہ ہو کہ بھئی چلو نیچے کھانا کھایا اس میں بہت گرد غبار لگ گیا, صاف کرنا مشکل تو مسئلہ الگ ہے, لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہے پھر بھی نہیں اٹھاتا, اس کو ڈال دیتا ہے, نہیں دیکھا گر گیا اس کو سائد پر رکھ دیا, وہ شیطان کھا رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے نبی کا فرمان ہے, تمہیں تو نظر نہیں آ رہا بھائی تھوڑا گر گیا نیچے ٹیبل پر یا دسترخوان پر تو سائد پر رکھ دیا, اس کو دوبارہ نہیں کھاتا, صاحب کھا جاؤ شیطان کیوں کھائے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹ لو اور شیطان کے لیے نہ چھوڑو. آخری بات جو یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ہے مہمان کے لیے, وقت تو نہیں ہے لیکن طعام الاثنین کافی الثلاث و طعام الثلاث کافی الاربع, دو آدمی کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے مومن کے گھر میں, اور تین آدمی کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے کھانا تیار کیا, کھانے کے لیے بیٹھے دو چار مہمان اور آ گئے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. ایسے موقع پر صاحب کھانا اور مکان مالک سوچنے لگتے یار مہمان آ گئے کیا ہوگا, ابھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر آنے والوں کی طرف سے ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے, کبھی کھانے میں شریک کیا جائے یا نہیں, کھانے بیٹھ جائیں گے تو کھانا گھٹ جائے گا. یہ سوچ جو آ رہی ہے کھانا تو کم لوگوں کا حساب کا بنایا ہے, دس آدمی کا پندرہ پانچ آدمی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی آپ کیوں فکر کرتے ہو, تین کا کھانا چار کے لیے ہو جاتا ہے, چار کا کھانا پانچ کے لیے ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تیرے کھانے میں تو اللہ برکت ڈال ہی دے گا, تو بٹھا تو دے پھر بھی کھانا بچ جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں یار ابھی آگے کیسے کھلائیں گے, جو بھی جی حضور ہو پیش کر دو برکت ہو جاتی ہے. اپنے ذہنوں میں ہم نے ایسا بنایا ہے کوئی دوست آ جائے کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے کیا ہے ہمارے قریب کا کوئی آدمی ہو تو اس کو ہم مہمان سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی اجنبی آ جائے تو جانتے ہی نہیں, جیسے بیچارے کو کچھ نہیں پوچھتے کتنے آتے ہیں رمضان میں یا کوئی نہیں پوچھتا, بڑے بڑے علماء آتے ہیں. خیر ایک واقعہ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, سنا دو ایک منٹ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا, پھر آئندہ وینسڈے کو میں نہیں ہوں نا, اس لیے نیکسٹ وینسڈے ہم لوگوں نے بھی ہی ہے, نیکسٹ وینسڈے میں نہیں ہوں, اس کے بعد والی وینسڈے کو بھی شاید نہ ہوں, دو وینسڈے تک نہیں ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ایک مرتبہ اپنے بیوی کے ساتھ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, مرغی پکی ہوئی تھی اور ایک اجنبی آ گیا باہر, اس نے کہا بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلا دو, تو اس کا اکرام کیا جائے لیکن اس کو کھانے میں شریک کر لیا جائے. وہ اس کا شوہر اتنا غصے ہو گیا اس کو جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا, نکل یہاں سے کچھ کھانا نہیں ہے. اب بڑا مالدار آدمی تھا وہ جو کھانے والا تھا, کم سے کم کچھ دے گا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے برے دن آ گئے, اس کے اس کام کے اوپر اللہ نے جو کچھ تھا سب لے لیا. اب اس کی بیوی کو طلاق بھی ہو گئی, پیسے بھی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو گیا. آج ہی مجھ پر ایک آدمی کا فون آیا, بڑی بڑی بزنس تھی سب ختم ہو گیا, اب یہ کسی اور کے مکان پر رہتا ہے, کھانا بھی نہیں اس کے پاس. آج ہی وہ ایک زمان جب میں تھا ساؤتھ افریقہ بڑا جاہ و جلال کا تھا, او ہو کتنی گاڑیاں کیا کیا اس کے لوگ اکرام, لیکن हुआ ये कि इसको भगा दिया, बदुआ लग गई या कुछ भी हो गया, इसलिए हर एक का इकराम करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ये जो खाने वाला आदमी जो था ये इतना फकीर बन गया, ये मांगने के लिए निकला, अचानक वो जो मांगने के लिए अल्लाह ने उसको यूं समझो कि इसका उसी को दे दिया, वो मालदार बन गया वो, और इसकी बीवी ने इसने बीवी को तलाक दी, उसकी दूसरी शादी उस आदमी से हो गई जो फकीर था, जैसे धर्म तो ना लिखा, और वो खाने बैठे हुए थे। तो फिर ये भीख मांगने के लिए पहले वाला आदमी उसके दरवाजे पर गया, पहले वाला आदमी उसके दरवाजे भीख मांगी, तो उस औरत ने अपने शोहर से दूसरे शोहर से कहा कि कोई फकीर आया है दे दो, कहा ले जाओ जाओ दे दो खाना दो। वो जब बाहर गई तो देख कर रोने लगी, रोती हुई घर में आई, शोहर ने पूछा फकीर ने मारा आपको छेड़ा, कहा नहीं, तो क्यों रोती हो, कहा ये मेरा पहला शोहर है, ये मेरा पहला शोहर है, अल्लाह देता भी है ले भी लेता है, इकराम किया जाए, इसलिए ये बात तो दिल में बिठा लो, मेरे नबी ने फरमाया तीन का खाना चार के लिए, चार का खाना पांच के लिए हो जाता है। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से बड़े फवाइद हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, या हम राहिमी या दल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दयान या सुल्तान, या कदीम अल एहसान, اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा, या अल्लाह हम सब को तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर ए अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा, अमल की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह हम इसको फख्र समझकर उस पर अमल करें, ऐसे हमें मुसलमान बना दे, अपने नबी की सुन्नत को हम प्राउड समझें कि मेरे नबी का तरीका है, मोहब्बत और प्यार के साथ हम इसको अदा करें और उस पर अमल करें, ऐसी ज़िंदगी हमें नसीब फरमा। अल्लाह हम जानते हैं तेरा फरमान कुरान में है, तू कभी राज़ी नहीं होगा जब तक तेरे नबी को राज़ी न किया जाए, अल्लाह जब तक तेरे नबी के सुन्नत पर अमल न किया जाए, ये तूने खुद फरमाया है, ऐ अल्लाह तेरी रजा नबी की सुन्नत में है, ऐ अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह अपने फजल व करम से अपने रहम व करम से, या अल्लाह हमारी दुआओं को ऐ अल्लाह इन आमीन कहने वाले और आमीन कहने वालियों के आमीन के साथ हमारी आमीन को मिलाकर हमारी दुआ और तौबा कबूल फरमा, हमारी औलादों को नेक बना, हमारी औलादों को नेक बना। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वा आलिहि।